नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। पॉल मैकफेड्रीज की अमेज़न फायर टीवी फॉर डमीज एक शुरुआती उपयोगकर्ता केंद्रित तकनीकी मार्गदर्शिका है, जो अमेज़न के फायर टीवी उपकरणों और फायर टीवी आधारित टीवी इंटरफेस को समझने में मदद करती है। यह पुस्तक मनोरंजन देखने के साधन को केवल ऐप खोलने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उपकरण की स्थापना, इंटरनेट कनेक्शन, सामग्री खोज, खाते की सेटिंग और रोजमर्रा के नियंत्रणों को व्यवस्थित ढंग से समझाने का उद्देश्य रखती है। डमीज श्रृंखला की शैली के अनुरूप इसका लक्ष्य तकनीकी शब्दावली से भयभीत पाठक को छोटे व्यावहारिक चरणों में आत्मनिर्भर बनाना है। मैकफेड्रीज लंबे समय से उपभोक्ता प्रौद्योगिकी पर लिखते रहे हैं, इसलिए पुस्तक का मूल दृष्टिकोण फीचर सूची देने के बजाय यह स्पष्ट करना है कि किसी विकल्प का उपयोग कब और क्यों किया जाए। फायर टीवी का अनुभव ऐप, सदस्यता, रिमोट आवाज नियंत्रण और नेटवर्क पर निर्भर करता है। पुस्तक इन्हीं परस्पर जुड़े हिस्सों को समझने के लिए एक आधारभूत संदर्भ के रूप में स्थित है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, उपकरण की स्थापना और खाते से जुड़ाव की बुनियाद फायर टीवी का उपयोग सही प्रारंभिक स्थापना पर निर्भर करता है। पुस्तक का एक प्रमुख व्यावहारिक क्षेत्र उपकरण को टीवी के उपयुक्त इनपुट से जोड़ना, बिजली देना, रिमोट तैयार करना और घरेलू वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है। ये चरण साधारण दिखते हैं, पर इन्हीं में अधिकांश नए उपयोगकर्ताओं को समस्या होती है, खासकर तब जब टीवी का गलत इनपुट चुना गया हो, नेटवर्क संकेत कमजोर हो या खाते का विवरण उपलब्ध न हो। अमेज़न खाते से जुड़ाव केवल साइन इन की औपचारिकता नहीं है, इसी से खरीदी गई सामग्री, ऐप डाउनलोड, प्राथमिकताएं और अमेज़न की सेवाएं एक उपयोगकर्ता पहचान से जुड़ती है। पुस्तक का उपयोगी विचार यह है कि स्ट्रीमिंग डिवाइस को अलग गैजेट नहीं, बल्कि घर के टीवी, इंटरनेट और डिजिटल खाते के बीच एक केंद्र माना जाए। स्थापना के दौरान विकल्पों को समझकर चुनने से बाद में सामग्री सुझाव, खरीद नियंत्रण और परिवार के दूसरे सदस्यों के अनुभव को बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है। यह दृष्टिकोण पाठक को केवल स्क्रीन पर दिखने वाले निर्देश पूरे करने के बजाय पूरी प्रणाली की भूमिका समझने में सहायता देता है। दूसरा, होम स्क्रीन खोज और सामग्री खोजने की व्यवस्था। फायर टीवी में चुनौती केवल देखने योग्य सामग्री की कमी नहीं, बल्कि अनेक ऐप और सेवाओं के बीच उसे जल्दी ढूंढना है। पुस्तक होम स्क्रीन और उसके नेविगेशन को इस समस्या का समाधान बनाने वाले इंटरफेस के रूप में रखती है। रिमोट के दिशात्मक नियंत्रण, चयन बटन, पीछे जाने का कार्य और खोज का उपयोग सीख लेने पर उपयोगकर्ता हर बार अलग अलग ऐप में भटकने के बजाय सामग्री तक अधिक सीधे पहुंच सकता है। होम स्क्रीन पर दिखाई देने वाली पंक्तियां, सुझाव और हाल में इस्तेमाल किए गए विकल्प देखने की आदतों तथा उपलब्ध सेवाओं से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए पुस्तक का व्यावहारिक महत्व यह समझाने में है कि सुझावों को पूर्ण खोज परिणाम न माना जाए। किसी फिल्म या कार्यक्रम की उपलब्धता, उसका मूल्य और वह किस सेवा में है, अलग बातें हो सकती हैं। शीर्षक, कलाकार या श्रेणी के आधार पर खोज उपयोगकर्ता को इस अंतर को जांचने में मदद करती है। यह भाग विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो पारंपरिक चैनल आधारित टीवी से ऐप आधारित मनोरंजन की ओर आ रहे हैं। यहाँ नियंत्रण सीखना वास्तव में सामग्री खोजने में लगने वाला समय घटाने और अनचाहे भुगतान से बचने का साधन बन जाता है। तीसरा, ऐप चैनल और स्ट्रीमिंग सेवाओं का प्रबंधन। फायर टीवी का मूल्य उसके हार्डवेयर से उतना नहीं बनता, जितना उस पर उपलब्ध ऐप और स्ट्रीमिंग सेवाओं से बनता है। पुस्तक इस पारिस्थितिकी को समझने के लिए ऐप खोजने, स्थापित करने, खोलने और व्यवस्थित करने जैसे कामों पर ध्यान देती है। उपयोगकर्ता को यह पहचानना आवश्यक है कि फायर टीवी किसी एक वीडियो सेवा का पर्याय नहीं है, अलग ऐप के लिए अलग सदस्यता, लॉगिन या भुगतान नियम हो सकते हैं। यही अंतर उस भ्रम को दूर करता है जिसमें दर्शक मान लेते हैं कि खोज में दिख रही हर सामग्री बिना अतिरिक्त लागत के तुरंत देखी जा सकती है। ऐप प्रबंधन का दूसरा पक्ष सुविधा है। जिन सेवाओं का बार बार उपयोग होता है, उन्हें आसानी से पहुंच योग्य जगह पर रखना नेविगेशन को सरल बनाता है। इसके विपरीत, कम उपयोग वाले ऐप हटाने या उनकी आवश्यकता पर पुनर्विचार करने से इंटरफेस अनावश्यक रूप से भरा हुआ नहीं लगता। पुस्तक का यह पक्ष उपभोक्ता को निष्क्रिय दर्शक के बजाय अपनी डिजिटल मनोरंजन व्यवस्था का प्रबंधक बनाता है। इसमें चयन का व्यावहारिक सिद्धांत है। पहले अपनी सेवाओं, रुचियों और भुगतान सीमाओं को समझे, फिर उसी अनुसार ऐप वातावरण बनाए। चौथा, एलेक्सा आवाज नियंत्रण और रिमोट के विकल्पों का उपयोग। फायर टीवी का एक विशिष्ट पक्ष एलेक्सा आधारित आवाज नियंत्रण है। पुस्तक इस सुविधा को केवल आकर्षक अतिरिक्त विकल्प नहीं, बल्कि खोज और नियंत्रण का वैकल्पिक तरीका मानती है। रिमोट के माइक्रोफोन बटन के माध्यम से शीर्षक खोजने, किसी प्रकार की सामग्री मांगने या बुनियादी प्लेबैक आदेश देने जैसी गतिविधियां संभव हो सकती हैं। इसका लाभ तब अधिक होता है जब स्क्रीन पर अक्षर चुनकर लंबा नाम टाइप करना धीमा लगे। फिर भी प्रभावी उपयोग के लिए यह समझ जरूरी है कि आवाज आदेश स्पष्ट हों और उपलब्ध सेवाओं की सीमाओं के भीतर हों। हर अनुरोध से एक ही प्रकार का परिणाम या वही सेवा खुलना निश्चित नहीं है। इसीलिए रिमोट नेविगेशन की बुनियादी समझ आवाज नियंत्रण का विकल्प नहीं, उसका पूरक है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश संतुलित उपयोग का है। सरल खोज या त्वरित नियंत्रण के लिए आवाज उपयोगी हो सकती है, जबकि परिणामों की तुलना, खाता विकल्प बदलने या सूक्ष्म चयन के लिए स्क्रीन और रिमोट अधिक भरोसेमंद रहते हैं। यह संयोजन तकनीक को अधिक सुलभ बनाता है, विशेषकर उन उपयोगकर्ताओं के लिए जिन्हें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड असुविधाजनक लगता है। अंत में सेटिंग, निष्ठा, खरीद नियंत्रण और सामान्य समस्या समाधान। फायर टीवी का दीर्घकालिक उपयोग तभी सहज रहता है जब उपयोगकर्ता सेटिंग और नियंत्रणों की भूमिका समझे। पुस्तक का यह आयाम नेटवर्क, डिस्प्ले, ध्वनि, खाते और उपकरण व्यवहार से जुड़ी सेटिंग को रोजमर्रा की उपयोगिता से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, रुक रुक कर चलती वीडियो केवल ऐप की समस्या नहीं हो सकती, बल्कि वाईफाई की गुणवत्ता, नेटवर्क भीड़ या उपकरण कनेक्शन से भी संबंधित हो सकती है। इसी तरह चित्र या ध्वनि की समस्या में टीवी इनपुट, केबल और आउटपुट सेटिंग की जांच एक तार्किक शुरुआती कदम है। खरीद और सदस्यता से जुड़े नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फायर टीवी पर सामग्री खोज, किराया, खरीद और ऐप सेवाएं एक ही अनुभव में दिखाई दे सकती है। परिवार में साझा उपयोग होने पर अनधिकृत खरीद से बचाव और बच्चों के लिए उपयुक्त पहुंच जैसे प्रश्न व्यावहारिक बन जाते हैं। पुस्तक का महत्व तैयार समाधान याद कराने में नहीं, बल्कि समस्या को क्रम से अलग अलग परतों में जांचने की आदत बनाने में है। पहले बिजली और कनेक्शन, फिर नेटवर्क, फिर खाता या ऐप, और अंत में विशिष्ट सेटिंग। यह क्रम अनावश्यक रीसेट या भ्रमित करने वाले बदलावों से बचाता है। निष्कर्ष में, अमेज़न फायर टीवी फॉर डमीज उन नए फायर टीवी उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त है जो सेट अप के बाद भी रिमोट ऐप खोज परिणाम, सदस्यता और सेटिंग के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से नहीं समझते। यह उन पाठकों के लिए भी उपयोगी है जो किसी परिवार सदस्य के लिए उपकरण तैयार कर रहे हैं और चाहते हैं कि उपयोग का अनुभव सरल, नियंत्रित और सुरक्षित रहे। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह टीवी देखने को एक तकनीकी व्यवस्था के रूप में समझाती है, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, अमेज़न खाता, ऐप सेवाएं, आवाज नियंत्रण और भुगतान विकल्प साथ काम करते हैं। इससे पाठक सामान्य समस्याओं को अधिक व्यवस्थित ढंग से पहचान सकता है और अपनी पसंद के अनुसार इंटरफेस तथा सेवाओं को व्यवस्थित कर सकता है। समान श्रेणी की त्वरित ऑनलाइन सहायता अक्सर किसी एक समस्या का छोटा उत्तर देती है। इसके विपरीत, डमीज प्रारूप बुनियादी अवधारणाओं से लेकर नियंत्रणों और समस्या समाधान तक एक क्रमबद्ध सीखने का मार्ग देता है। पुस्तक विशेष रूप से उस समय की फायर टीवी व्यवस्था के लिए लिखी गई है, इसलिए इंटरफेस और सेवाओं में बाद के बदलाव संभव है। फिर भी इसके मूल सिद्धांत, जैसे नेटवर्क जांचना, सामग्री की उपलब्धता और कीमत अलग अलग समझना तथा खाते और खरीद नियंत्रणों को संभालना, स्थायी उपयोगिता रखते हैं। तकनीकी आत्मविश्वास बनाने वाली चरणबद्ध उपभोक्ता मार्गदर्शिका के रूप में यही इसकी मुख्य पहचान है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं पॉल मैकफेडरीज, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।